SBS हिंदी।
दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त जाने माने लेखक जिन्होंने भारत के स्पेस मिशन पर, अंतरिक्ष अभियान पर बहुत काम किया है, अजय लेले मेरे साथ हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड अजय लेले मेरे साथ हैं और वो हमें बताएंगे कि आज जो भारत का चंद्रयान जा रहा है अंतरिक्ष की ओर, उसकी क्या अहमियत है। ग्रुप कैप्टन लेले, आपका स्वागत है SBS हिंदी पर।
धन्यवाद
सर। क्या आप हमें बताएंगे कि आज जो हो रहा है वो कितनी बड़ी घटना है?
मेरे विचार से भारत के लिए बहुत बड़ी घटना है। आपने ये जाना होगा कि 15 तारीख को ही ये मिशन जाना था, लेकिन किस कारणवश एक घंटा पहले ही ये मिशन को रोकना पड़ा। लेकिन इसरो के साइंटिस्ट ने इमीडिएटली काफी अच्छी मात्रा में फॉल्ट्स डिटेक्शन कर दिया और करेक्टिव मैकेनिज्म भी अप्लाई कर दिया है, तो उसके बाद आज ये मिशन जाने वाला है। भारत का अगर हम देखेंगे पूरा प्रवास जो है मून मिशन का, वो काफी साल पहले शुरू हुआ था। 2008 में भारत ने पहला मून मिशन किया था और आज ये दूसरा मून मिशन है। लेकिन ये मिशन की खासियत ये है कि पहले मून मिशन में एक ऑर्बिटर गया था जो एक सैटेलाइट था और वो चंद्र के इर्द गिर्द घूम रहा था और फोटोग्राफी कर रहा था चंद्र के पृष्ठभाग की। लेकिन आज जो मिशन जाने वाला है वो करीब 48 डेज के बाद चंद्र के ऊपर प्रस्थापित होगा एज अ ऑर्बिटर और उसमें से रोवर और लैंडर सिस्टम चंद्रमा की पृष्ठभूमि पे लैंड किया जाएगा। तो इसको हम सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। भारत ने आज तक किसी भी ग्रह पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया था, इसलिए यह मिशन बहुत महत्वपूर्ण है।
अक्सर ये सवाल उठता है कि भारत जैसे देश को स्पेस रेस का हिस्सा होना चाहिए या नहीं, उस पर इतना पैसा खर्च कर रहा है भारत, क्या ये वर्थ है?
मेरे विचार से पहली चीज तो आर्म्स रेस वगैरह जो कंसेप्ट थे वो कोल्ड वॉर इरा के थे। आज के जमाने में लोग जब किसी भी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो काफी विचार पूछ करके समझ बूझ से इन्वेस्टमेंट करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हैं। भारत का जो स्पेस में इन्वेस्टमेंट है वो भी एक समझदारी के बाद किया हुआ इन्वेस्टमेंट है। भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब से भारत ने स्पेस में अपना इंटरेस्ट जताया है और काफी अच्छी तरह से प्रोग्रेस किया है। अगर आप भारत का पूरा प्रोग्राम देखें तो वो पूरा प्रोग्राम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है। तो आज भारत की जो प्रगति हुई है, गरीबी हटाने के लिए जो बहुत सारे काम किए गए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए गए हैं, उसमें स्पेस का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं ये कहूंगा कि जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि भारत जैसे गरीब देश को स्पेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्या, तो मेरे विचार से गरीबी है इसीलिए हमें स्पेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि स्पेस एक ऐसा जरिया है जो कई सारे आपको प्रावधान देता है गरीबी मिटाने के लिए।
और स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे वो डिफेंस की स्ट्रेटजीज हों या इंटरनेशनल पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हों, उस लिहाज से इस तरह के मिशंस का की क्या इम्पोर्टेंस लगती है आपको?
मेरे विचार से ये मिशन का इम्पोर्टेंस स्ट्रेटजिक बहुत लिमिटेड मात्रा में होगा। ये मिशन का इम्पोर्टेंस या ऐसे वाले मिशन का इम्पोर्टेंस दो लेवल पे दिखा जा सकता है। एक तो भारत अपनी टेक्नोलॉजी की प्रगति लोगों के सामने लेके आ रहा है। अगर हम इनडायरेक्टली स्ट्रेटेजिक बेनिफिट देखें तो आप एक प्रगतिशील टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, तो कई स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज इसमें से आ सकती हैं जो आपको स्ट्रेटेजिक पर्पजेस के लिए शायद उपयुक्त हो। लेकिन कोई भी चांद के खाली स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज के लिए नहीं जाता। मेरे विचार से अब पूरे विश्व भर में ये एक लहर चली है कि अगर हमें चांद पे जाना होगा या मंगल ग्रह पे जाना होगा तो आपको बेसिकली एक कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म करना पड़ेगा सब कंट्रीज को मिलके। सो अब ये जो आइडिया है कि एक कंट्री अपने बलबूते पे करेगा वो शायद आगे आने वाले दिनों में कम होता जाएगा और कंट्रीज कोलैबोरेट करते जाएंगे, क्योंकि इनमें टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स मद्देनजर रखते हुए ये बहुत अच्छी चीज रहेगी कि दुनिया के कंट्रीज इसमें कोलैबोरेट करें। ऑलरेडी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक अच्छा उदाहरण है कि जहां पे एक मेजर स्पेस एक्सपेरिमेंट में 16 कंट्रीज कोलैबोरेट कर रहे हैं।
डॉक्टर लेले, 50 साल हो गए हैं पहली बार जब इंसान ने कदम रखा था चांद पर, और तभी से इंसान ये सपना देखने लगा था कि एक दिन चांद पर बस्ती बनाएंगे, एक दिन रहने लगेंगे चांद पर। आपको क्या लगता है कितनी दूर है वो सपना?
मेरे विचार से जो सपना हमने 60 के या 70 के दशक में देखा था वो काफी हद तक अधूरा रह गया, क्योंकि बाद में ये मेजर मिशंस पे इन्वेस्टमेंट्स टेक्नोलॉजी के लिए एज वेल एज फाइनेंशियली नहीं हुआ था। ये इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि अगर आप 60 का दशक देखें तो उसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक इंटरनेशनल डोमिनेंस या टेक्नोलॉजी सुपर पावर दिखाने के लिए था। तो जब अमेरिका ने एर्स्टवाइल यूएसएसआर को या सोवियत गणराज्य को ये दिखा दिया कि उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो सोवियत गणराज्य ने यूएस को प्रॉब्लम में डाला था, गागारिन मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, जब यूरी गागारिन पहला आदमी था जो स्पेस पे गया था, तो उसके बाद यूएस ने अपना टेक्नोलॉजी डोमिनेंस मून मिशन करके देखा था। तब शायद दुनिया को पता नहीं था कि मून पे जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो आज मून के बारे में काफी सारी जानकारी उपलब्ध है, जहां पे हमें मून मिनरल्स के बारे में पता है, मून के ऊपर पानी होने के बारे में पता है, तो काफी सारी मून के बारे में जानकारी है। और इसलिए आज दोबारा यह प्रयास किया जा रहा है कि हम ये सोच रहे हैं कि आने आगे वाले दशकों में हम मून के ऊपर शायद एक ह्यूमन सिविलाइजेशन बना सकते हैं।
जी, समय देने के लिए, बेशकीमती समय हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय लेले साहब।
थैंक यू सो मच।
आप जुड़े हैं SBS हिंदी रेडियो के साथ। sbs.com.au/hindi पर जाएं और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाएं।